हम चाहे ईश्वर को सुनावे या चाहे अपने घर के माता पिता को सुनावे, करते रहते। केवल 101-102 डिग्री में ही आया करने लगते। 104-105 हो जाए तब कितनी पीड़ा होगी, और 7 होते होते तो प्राणांत हो जाए। शरीर में पाप बढ़ जाता है और जीव जलने लगता है, देहाभिमानी जीव जलने लगता है, देह मुक्त नहीं जलेगा। तो जैसे ज्वर से पीड़ित, ज्वर रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए सुंदर औषधि हो और उसको तत्काल शांत कर दे, सुख दे, वैसे आपका वचन मेरे लिए अमृत है, औषधि है। मैं ज्वर रोग से पीड़ित, ज्वर क्या है, ये राजापना का जो अभिमान है यह ज्वर है, ये बुखार। एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि ज्वर में, ज्वरी में और धनी में एकता है। धनी आदमी में और जिसके पास ज्वर है, जिसको बुखार आया हो, दोनों एक जैसे होते हैं। ज्वर जब आता है तो मुख तीता हो जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति बहुत धनी होता है उसका मुख बिगड़ जाता है, वो ठीक से बोलता नहीं तो तीता बोलता है ऐसा। और क्या क्या है उसमें, बहुत सी बातें लिखी गई, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। भक्त से द्वेष करता है, भक्त का भात होता है संस्कृत भात। तो ज्वर रोग से जो पीड़ित हो जाता है तो उसे भात अच्छा नहीं लगता है, और वैद्य लोग भी भात मना कर देते हैं, भात नहीं खाना, तो संस्कृत में उसे भक्त कहते हैं। बहुत धनी आदमी अपने सेवकों से भी ठीक से बात नहीं करता है, भक्त से द्वेष करता है, जलन करता है, मुख बिगड़ जाता है, कुछ तरह अन्य तरह की बातें बोलने लगता है। तो ज्वरी नाम और धनी नाम एक जैसे होते हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि राजापना का जो मेरे पास अभिमान है वह ज्वर जैसा मुझे तंग कर रहा था। वास्तव में हम लोग भी जब मानते हैं कि हम इस परिवार के सब कुछ हैं, ये है हमारा, इतना बड़ा पोजीशन है मेरा, यह है वह है, तो वास्तव में यह ज्वर की तरह हमें जलाएगा जीवन भर। सुख चाहिए, शांति चाहिए तो ममता नहीं करनी चाहिए, कम से कम मन में। बाहर व्यवहार करके भी मन में ममता न करे, वैसे जैसे स्टेज पर ड्रामा करने वाले सारा व्यवहार करते हैं, व्यवहार में कमी नहीं आती है कि नहीं। जिसको जो पार्ट बोलना है, जैसे किसी को मारना है या प्यार करना है, करता है, लेकिन वहां यह नहीं मान लेता है कि ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है, ऐसा नहीं मान लेता। व्यवहार करे लेकिन माने ना, तो ये जो मान्यता है ममता है ज्वर। और निदाघ दग्ध से जथा हिमान भा, जैसे सूरज के कठिन प्रकाश से, धूप से जलता हुआ व्यक्ति अकस्मात हिम अम्भ, हिम जल, गंगा जी का जल अथवा शीतल जल प्राप्त हो, उसे गंगा जी के शीतल जल में प्रवेश कर जाए जलता हुआ धाम से व्यक्ति, उसे जितनी शांति मिलेगी उस तरह से मुझे शांति मिल रही है। और इतना ही नहीं, आपके वचन ऐसे हैं जैसे किसी अंधे व्यक्ति को अमृत मिले और उसकी आंख खुल जाए, उस तरह से मेरे नेत्र खुल रहे हैं, मैं देखना प्रारंभ कर चुका कि मैं देह नहीं हूं और मैं भगवान का नित्य दास हूं। तो खुदे माना ही विदस दृष्टे ब्राह्मण बचस्ते मृतम औषधम में, हे ब्राह्मण, मैं इस कुत्सित देह में अहंकार करके, इसको मैं मान करके उसी तरह से विवेकहीन हो गया हूं जैसे किसी व्यक्ति के नेत्रों में सांप डंस दे और वह कुछ न देख पावे, उसकी दृष्टि नष्ट हो जाए। जो व्यक्ति देह को मैं मानेगा वह सत्य को कभी नहीं जान सकता है, वह विवेकहीन हो जाता, अंधा हो जाता। शरीर को पोषने के लिए ही वो सब कुछ करता है। बड़े बड़े शहरों में या गांवों में भी सब लोग जो काम धंधा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इस कुत्सित देह को पोषना है ना। इस राख होने वाले या कृमि बनने वाले या बीट बनने वाले शरीर के लिए लाखों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हमने सुना है कि बंबई में लोग एक एक दिन में एक एक होटल में ठहर कर 5,000 या 10,000 कितना रुपया खर्च कर देते हैं कुदेह के लिए। अरे हाड़ चाम मल मूत्र खून आदि को ठीक रखने, मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने पैसे का ऐसा दुरुपयोग करे, इसके लिए उसे दंड मिलता है। यदि पैसा इकट्ठा होता है तो शास्त्र कहता है कि उसे दूसरों के लिए दान करना चाहिए, बांटना चाहिए। कई तरह की आवश्यकता होती है, बहुत लोग अभाव में रहते हैं, उनको देना चाहिए। इसको निरोपण कहते हैं, आगे के श्लोक में आएगा। बोना, यदि खेत में कुछ बोता है तो कई गुना फसल आती है, तो यहाँ का दिया हुआ दान कई गुना परलोक में मिलता है, इसलिए भी देना चाहिए। पहले के लोग ऐसे होते थे, राजा महाराजा जो बहुत दान करते थे गरीबों को, या किसी की पुत्री का विवाह नहीं हो रहा हो तो उसका विवाह करा देना, या किसी लड़के का विवाह करा देना, भूखे को अन्न देना, वस्त्र देना, दवा देना, ये सत्कर्म है। भगवान चाहते हैं कि परस्पर एक दूसरे की सहायता लोग करें, वो सृष्टि किए हैं तो चाहते हैं कि यह गुण सब में आए। लेकिन जब हम कुदेह मान, जब इस कुत्सित देह का ही रिस्पेक्ट सत्कार करने लगते हैं, इसी को मैं मान करके, तो हम विवेकहीन हो जाते हैं। दूसरा चाहे कुछ भी दुख भोग रहा हो, हम उसे नहीं सहारा देते हैं, केवल कुत्सित देह को सजाना चाहते हैं। सजा कर करेंगे क्या? ये कुत्ता सियार और गिद्ध का भोजन है, इसको हम चाहे कुछ भी नाम देते हैं, सजाते हैं, लेकिन अंत में तो ये चला जाएगा, राख हो जाएगा। कुदेह माना ही विदष्ट दृष्टि, तो कुत्सित देह में जो आत्मा विनिवेश कर लेता है उसकी दृष्टि नष्ट हो जाती है। तो वास्तव में जो लोग इस संसार में कुत्सित देह में आत्मबुद्धि किए हैं, उनके लिए जड़ भरत जी का वाक अमृत है, औसत है, निकल जाएगा आत्मा भिन्नवेश शरीर से। यह प्रसंग इसी के लिए खास करके रखा गया है। इस प्रसंग का मुख्य उद्देश्य है, जो लोग धर्म के प्रति, स्वधर्म के प्रति, अपने व्यवहारिक कर्तव्य के प्रति बहुत ज्यादा आग्रह रखते हैं, उनकी आस्था को तोड़ने के लिए यह है। और स्पिरिचुअल अर्थ भगवत भक्ति को ही स्थापित करने के लिए है। प्राय समाज में दो वर्ग रहता है, जैसे भगवान विष्णु के दूतों में और जमराज के दूतों में बहस हुआ है भागवत में, तो एक पक्ष लौकिक व्यवहार को महत्व दे रहा था जमराज के दूत, और भगवान के भक्त भगवान नाम जपने की महिमा बोल रहे थे, और बीच में कैंडिडेट था जामिल, वो बेड पर पड़ा था और उसके लिए दो दलों में बहस हो रहा था। एक दल कह रहा था कि महापापी है, और दूसरा कह रहा था इसका कोई पाप नहीं है, सारा पाप खत्म हो गया, और वो सुन रहा था, वो चुपचाप था और सुन रहा था कि हाय बाप, कौन दल विजयी होगा, क्या मुझे नरक में जाना पड़ेगा कि मैं मुक्त होऊंगा। जैसे कोर्ट में बहस चलता है, दो दल बोलते हैं और अभियुक्त खड़े रहते हैं कटघरे में, और बहस चलता है, पता नहीं रहता है कि क्या होगा, अब यहां से हम हथकड़ी पहनकर जाएंगे जेल में कि मुक्त हो जाएंगे। तो अजामिल की वही दशा थी, सोया था और उसके कारण बहस चल रही। जमराज के दूतों ने कहा कि पापी है, ये है, वो है, पहले बहुत अच्छा था, एक दिन वन में गया तो ऐसे ये किया वो किया, इस नलायक को हम लोग ले जा रहे हैं नरक में शुद्ध करने के लिए, हम लोग इसके शत्रु नहीं है, हम लोग इसको शुद्ध करने के लिए ले जा रहे हैं, आप लोग क्यों रोकते हैं। हम लोग इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसमें आप क्यों बाधा दे रहे हैं, आप इतने सुंदर हैं देखने में, हमने कभी ऐसा सुंदर व्यक्ति नहीं देखा, लेकिन इतना बैड काम क्यों कर रहे हैं आप, इस पापी का पक्ष क्यों ले रहे हैं। भगवान के दूत हंसते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम लोग धर्म का रहस्य नहीं जानते, जिस समय इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया उसी समय इसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो गए। हम बताइए कहां व्यवहारिक सत्य और कहां भगवान का एक नाम। तो वहां उस प्रसंग में भी दिखाया गया है कि भगवत भक्ति ही बढ़ करके, भले कोई व्यक्ति गरीब है या सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यवहार कुशल नहीं है, कोई बात नहीं, यदि वह कृष्ण का भक्त है तो ठीक, उसकी स्थिति ठीक है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणं भुजं हरे भजन पकोत्पत्तपते यदि कोवा अभद्र से अभूदमुष्य किं कोवार्थ आप तो भयतम स्वधर्म तक। नारद मुनि कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करके क्या लाभ होता है, और स्वधर्म को छोड़ करके कोई भगवान का भजन कर रहा है और उसमें अपक्व भी रह गया, नहीं भी पहुंचा, तो उसकी क्या हानि होती है, कुछ नहीं, कोई हानि नहीं होती, लाभ होता है। तो यही बात दिखाई गई है और दो राजाओं में बात हो रही है, एक पूरा विश्व में सम्राट रहे राजर्षि भरत, पूरा व्यवहार करके देखे सब किए, और थोड़ा ऐसा दया करके एक व्यवहार निभाए, उसी के चलते चले गए करते। उनके सामने एक हरिण बह रहा था, दया किए और उस दया ने उनके जीवन को कृष्ण भावनाहीन कर दिया। हम लोग भी दया में फंसे हैं, जब बाहरी एनिमल में इतनी दया हो सकती है तो अपने से अपने देह से जन्मे हुए बच्चे में कितनी ममता होगी। तो वे तो उसके लिए भजन छोड़ दिए, हम तो अपने बच्चे के लिए दूसरे की जान भी मार देंगे, ऐसा कर सकते, करते ही हैं लोग, अपने परिवार के पोषने के लिए, अपने बच्चे के पोषने के लिए, अपने देह को पोषने के लिए हम दूसरे के दुख को नहीं समझ पाते, ये है ना। हम समझते हैं कि हमारे इन कर्मों को कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन जगत को उत्पन्न करने वाला ईश्वर देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, वो सब देखते रहते हैं। तो किसी भी अवस्था में हमें भगवान को देखना है, उनके अनुसार जीवन जीना है, भगवान का नाम ले करके बहाना करके नहीं जीना चाहिए। जैसे राजा रघुगढ़ कह रहे हैं कि मैं राजा हूं, मैं प्रजा का रक्षक हूं, तो जब भरत जी ने कहा कि इनकी क्या रक्षा कर रहे हो, ये प्रजा है ना, बिना वेतन के लगाए हो पालकी में और तुम्हें कहते शर्म नहीं लगती है, इतना धृष्ट हो गए हो, इनकी क्या रक्षा कर रहे हो, और तुम्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं कि रक्षक रक्षक मानो, रक्षक भगवान है, सबकी रक्षा वे करते, तुम क्या पालन करते हो। वे कहे हैं आगे चल करके, वाजी प्रसंग आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, रक्षा यही है ना कि इनको पालकी में जोते हो, पसीना से तर बतर हो गए हैं, आओ कर रहे हैं, यही रक्षा कर रहे हो ना, और ऊपर से वचन विष बरसा रहे हो, सांत्वना भी नहीं दे रहे, बेटा ठीक से चलो, कोई बात नहीं, आराम कर लो, धीरे धीरे चलो, मधुर बात भी नहीं बोल रहे हो, ऊपर से डांट रहे हो, अहंकार हो जाता है। हम वृंदावन में देखे हैं कुछ लोग चार आना पैसा के लिए रिक्शा वाले से इतना झगड़ा करते हैं, और बेचारा पसीना से तर बतर हो जाता है, लोई बाजार से मंदिर आते आते उधर से चढ़ान पड़ता है, और चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी तो कहते रहते हैं, और देना होता है तो कम देना चाहते हैं, ये निर्दयता है। वास्तव में बेचारा पसीना से तर बतर है और मांग रहा है, ब्रजवासी है, लेकिन चार आने के लिए ऐसा झगड़ा करते हैं, नहीं ये रिक्शे वाले मनमाना लेते हैं, ये करते हो करते, तुम अपने कुत्सित देह के लिए कितना खर्चा कर रहे हो, और वहां पर बन जाते हो धर्मात्मा, तीर्थ करने गए हो। तीर्थ करने गए, इस तरह का ज्ञान देह में अहम बुद्धि करने से होता है, अपने लिए खर्च करना होगा तो 50-100 कुछ भी केयर नहीं करेंगे, दूसरे के लिए करना होगा तो 1 रुपये के लिए झगड़ा करते, ऐसा होता है, और मनुष्य समझता है मैं भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इसीलिए इस व्यवहार को परमार्थ के आगे तुच्छ कह रहे हैं। तो यह है अनुमोदन राजा रघुगण का, जब भरत के प्रवचन का, कि ते बचह में अमृतम औषधम, आपके वचन मेरे लिए अमृत है औषध। लेकिन ऐसा कह करके फिर कहते हैं कि मुझे कुछ संशय है, वो तो मैं बाद में आपसे पूछूंगा। तस्मात् भवन्तं मम संशयार्थं प्रक्षा पश्चात अधुना सुबोधम अध्यात्म जोग ग्रथितम तवोक्तम आख्या ही कौतूहल चेत सोमे। आपका वचनामृत हमारे संसार रोग को नष्ट करने वाला है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। तस्मात् प्रक्षामि, और मुझे कुछ संशय है, मैं संशय के लिए पूछूंगा। संशयार्थम प्रवक्ष्यामि, संशय के लिए पूछूंगा, इसका मतलब संशय पढ़ाने के लिए नहीं पूछूंगा। संशयार्थम का अर्थ होता है संशय का नाश करने के लिए पूछूंगा। हमें कुछ संशय है, लेकिन यहां यह वाक्य कैसा लग रहा है जैसे संशय के लिए पूछूंगा। संशयार्थम प्रक्ष्यामि, संस्कृत में एक श्लोक उद्धृत किया गया है, उसमें यह है कि जैसे किसी को कहा जाए मस्कार्थम धूपम, मशक के लिए धुआं पैदा करो, तो इसका मतलब होता है मच्छर को भगाने के लिए धुआं पैदा करो, है मच्छरों के लिए धुआं पैदा करो। मच्छरों के लिए का अर्थ है मच्छर को मारने के लिए, भगाने के लिए धुआं पैदा करो। तो ऐसे ही संशयार्थम प्रक्ष्यामि, मैं अपने संशय के लिए पूछूंगा, इसका मतलब हमारे भीतर संशय है, मैं अपने संशय का नाश करने के लिए आपसे बाद में पूछूंगा, पश्चात, अभी नहीं पूछूंगा, वो तो बाद में पूछूंगा। लेकिन आप जो कहे हैं उसी बात को अधुना इस समय सुबोधम आख्या ही बिल्कुल सरल करके जरा व्याख्या कीजिए। मैं इतना बुद्धू हूं कि वो कोड से नहीं समझूंगा, व्याख्या कीजिए इसकी। बिना व्याख्यान के हमारे जैसा गधा नहीं समझ सकता, इस तरह कह रहे हैं। बहुत बहुत प्रवचन की जरूरत होती है। आप बताइए कि भागवत सप्ताह में 335 अध्याय कह दिया जाए तो कैसे लोग समझेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। एक एक स्कंध में एक एक वाक्य भी कभी कभी कथाकार लोग कहते और बीत जाता। मैं वृंदावन में एक बार कथा सुन रहा था, एक कथाकार कथा कह रहे थे, दशम स्कंध के 49 अध्याय, नहीं 49 नहीं है 42 अध्याय वो चार पांच वाक्य में पार कर दिए। कृष्ण का जन्म होता है, नंद बाबा के यहां बधाई बजती है, इसके बाद वो गए मथुरा, कंस का वध किए, ये किए, हो गया 42 अध्याय समाप्त। इस तरह क्या समझ में आएगा। तो राजा रघुगण कह रहे आख्या ही मतलब उसको ख्या ही मतलब ख्यात कीजिए, अधिक शब्दों में अधिक वाक्यों में उसी सत्य को बोलिए। जो दो चार श्लोकों में बोले हैं उसको जरा और विस्तार से बोलिए, तब मैं समझूंगा। मुझे जो संशय हो तो बाद में पूछूंगा, लेकिन जो आप कहे हैं उसी को और विस्तार से समझाइए। अध्यात्म जोग ग्रसितम तवोक्तम, आपका जो भी प्रवचन है वो आध्यात्मिक योग से युक्त है, मतलब आत्मा और भगवान के विषय में बताने वाला है, इसको अध्यात्म योग कहते हैं। और हम लोग जो इस संसार में बोलते हैं, प्रवचन करते हैं स्कूल कॉलेज आदि में, वो सब माया योग है, माया योग ग्रथित, यहां तक मायावाद ग्रथित। माया एक वर्णन करते हैं, लेकिन जब भरत जी जब बोले तो भगवान पर बोले, आत्मा पर बोले, इसको अध्यात्म योग ग्रथित कहते हैं। ग्रथित का अर्थ है गूथा हुआ, संदर्भित, संदर्भ जिसमें आत्मा की बातें की जा रही है, आत्मा के विषय में बात किया जा रहा है, शरीर के विषय में क्या बात करना। तव उक्तम अध्यात्म योग ग्रथितम, इसको आख्या है, व्याख्या कीजिए। तो जगभरत जी ने कहा कि सुनना चाहोगे तब न व्याख्या करूंगा, सुनना चाहते हो तब। कहते हैं कौतूहल चित्तों में, सुनने की इच्छा क्या, हमें बहुत आनंद आ रहा है, हमें बहुत आनंद आ रहा है, हमें उत्कंठा है, लालसा है कि और आपके मुख से सुनू और सुनू और सुनू। इसलिए मैं आख्या है, मैं कौतूहल चित्त, हमारे चित्त में बड़ा कौतूहल है, व्याख्यान के बिना मेरा भ्रम नहीं जाएगा, व्याख्यान के बिना मेरा भ्रम नहीं जाएगा। एक दिन एक कोई एक स्त्री आई थी मेरे पास प्रश्न की कि स्वामी जी जब हम जान गए कि हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, भगवान का प्रसाद खाना है, तो गुरु की क्या जरूरत है, अब क्या गुरु की जरूरत है, आप बताइए, उसको क्या समझाया जा सकता है। बहुत बहुत जरूरत है, जीवन के अंतिम श्वास तक गुरु की जरूरत होती है, और गुरु एक ही नहीं होता है। इस संशय में नहीं रहना चाहिए कि बस हम जिसे दीक्षा ले लिए बस वही गुरु हो गया, नहीं नहीं नहीं, यह भगवत तत्व इतना विविध है, इतना विशाल है कि कोई कुछ सहायता करेगा आपकी, कोई कुछ सहायता करेगा, कोई भगवान के किसी विशेषता को बताया, कोई आत्मा को बताया, कोई नियम बताया, कोई कुछ बताया, बहुत लोगों की जरूरत है जो एक जीव को हेल्प करे, और ये सभी गुरु हैं। हृदय से वास्तव में मानना चाहिए, और जो व्यक्ति इस तरह से कन्फाइंड हो जाती है, जिसकी श्रद्धा, कन्फाइंड का अर्थ है जेल में बंद एक व्यक्ति में, वह कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, यह निश्चित है, क्योंकि उसे अध्यात्म की जिज्ञासा नहीं होगी, वास्तव में भगवान को पाना नहीं चाहेगा, वो बस एक में बंधा रहेगा। भगवान ने भागवत में कहा है कि एक गुरु से पुष्कल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती लिखा, इसीलिए वो दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा कहे। तो वास्तव में वे तो गुरु बने नहीं थे, लेकिन उनसे शिक्षा ली गई थी। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि वे हमारे गुरु, हमारे गुरु, और हम लोग इतने जड़ हो जाते हैं कि किसी दूसरे को हम गुरु कह भी नहीं सकते। वो तो बालक को गुरु कह रहे हैं, वेश्या को गुरु कह रहे हैं, पक्षी को गुरु कह रहे हैं, समुद्र, कपूर, चंद्रमा, रवि, सबको गुरु कह रहे हैं, और हम लोग वास्तव में जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं उन लोगों को भी गुरु नहीं कह सकते। अजीब अजीब काल आ गया। रास्ता चलते चलते भेंट हो गई, और केवल ये सब मिलाकर एक घंटे का प्रवचन हुआ होगा, लेकिन जब भरत जी गुरु हो गए उनके। बहुत पहले से कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि किसी ने कहा था कि इनसे दीक्षा ले लीजिए, ऐसा नहीं कहा, रास्ता चलते भेंट हुई, उनका संशय दूर हुआ, वे गुरु हैं। तो सभी बातें जब फॉर्मेलिटी में आ जाती है तो अध्यात्म की जिज्ञासा का दम निकल जाता है, असलियत खत्म हो जाती है, तब एक ग्रुप हो जाता है। वास्तव में एक ग्रुप होता है और एक लीडर होता है कुछ खास बातों करने के लिए, लेकिन अध्यात्म बहुत विशाल है, इसे जानने के लिए बहुत बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। और ऐसे भी देखिए, हम लोगों के जीवन में जो भी शिक्षा है, पढ़ाई है, वो एक गुरु से नहीं है। जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गए तो वहां पर हमें दूसरे शिक्षक पढ़ाए, कुछ हेल्प किया उन्होंने, शब्द ज्ञान के विषय, शब्दों का ज्ञान हुआ, माता पिता से हम आचार विचार सीखे, उनसे बोलना सीखे, चलना सीखे, फिर उन गुरुजनों से सीखते हैं, किसी से कुछ सीखे, किसी से कुछ सीखे, किसी से कुछ सीखे, लेकिन कलयुग में ऐसा है जिससे दीक्षा लिए बस हमारा गुरु, हमारा गुरु, हमारा गुरु। यह आध्यात्मिक विकास की गति को अवरुद्ध कर देता है। निश्चित समझना चाहिए कि जो भी मैं बोल रहा हूं शास्त्र से बोल रहा हूं। तो कुछ तो ऐसे भी गुरु देखे जाते हैं कि अगर उनका शिष्य दीक्षा लिया हुआ दूसरे गुरु के पास पहुंचे तो वो तुरंत कहे क्यों उधर क्यों गए, उधर क्यों गए, एक बार वृंदावन में मैं था और भागवत में जाने वाला था, भागवत में जाने वाला था बिहार में, तो एक भक्त चलने के लिए तैयार हो गया। चलने के लिए तैयार हुआ तो मैं कहा कि छुट्टी मांगो, लेकिन ये मत कहना कि मैं भागवत में जा रहा तो वो छुट्टी ले लिए जैसे तैसे घर जाने का कह, लेकिन जिस जैसे तैसे पता चल गया छुट्टी देने वाले को कि ये भागवत में जा रहा है, तो वो छुट्टी देने वाला क्या कहता, वो तो तुम्हारे गुरु नहीं है, वहां क्यों जा रहे हो? अरे बाप रे बाप, तो वो भागवत में न जाए केवल गुरु के पास जाए यह सिद्धांत हो जाता, और उसे नहीं जाने दिया गया, रोक दिया, पता चल गया कि भागवत में जा रहा, यह हिसाब होता है। तो यह अध्यात्म का विषय, भागवत विषय बहुत भास्ट है, बहुत विशाल है, बहुत बहुत शिक्षा लेना है और बहुत लोगों से हमें हेल्प लेना चाहिए। इसीलिए वंदना में कहते हैं वंदे श्री गुरु श्रीजुक्त पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश। आजकल एक फैशन चला गया है, श्री गुरु और होता है, गुरु और होते हैं, लेकिन तो श्री गुरु और श्री गुरु, गुरु अन्य गुरुओं के लिए भी श्री शब्द लगाया गया है, और जिसे दीक्षा लिया है उसके लिए भी श्री गुरु लगाया गया है। वंदे श्री गुरु श्रीजुत पद कमलम गुरुन वैष्णवांश, श्री गुरुन वैष्णवांश और श्री गुरु, बहुत फैशन चल गया है श्री गुरु, श्री गुरु और होता है, बाकी और गुरु होते हैं नया नया अर्थ करते हैं, श्री गुरु और होता है और बाकी और गुरु गुरु होते हैं, श्री गुरु नहीं होते मुझको इंग्लैंड में एक व्यक्ति कह रहा है, तब मैं ध्यान दिया कि क्या कह रहा है श्री गुरु और गुरु श्री तो अपनी ओर से लगाया गया, श्रद्धा के लोग किसी भी लगा सकते हैं, वो किस बात पर इधर आ गया पता नहीं। हाँ, उत्कंठा शब्द पर मैं बोल रहा था कि राजा रघुगण कहते हैं मुझे बहुत लालसा कौतूहल है, उचेत स्वर्ग मेरे हृदय में बहुत लालसा है, आप और सुनाइए और सुनाइए, इसको सुबोधन जैसे मैं अच्छी तरह से समझ सकूं उसको और समझाइए। और सुबोधन का यह अर्थ है कि जो आप थोड़े से वाक्यों में सत्य का प्रतिपादन किए हैं उसको और शब्दों में समझाइए, ये हमेशा की परंपरा रही है। जैसे हम यहां पर भागवत का श्लोक ले रहे हैं लेकिन इसकी व्याख्या कर रहे हैं, यह परंपरा रही है, क्योंकि बिना व्याख्यान के भ्रम दूर नहीं होता है, समझ में नहीं आती है बात। तो आपका प्रश्न क्या है हम पूछते हैं, जब भरत जी ने कहा ठीक है पूछो तुम्हारा प्रश्न क्या है, ये कहते हैं जदाह जोगे स्वर दृश्यमानम क्रिया फलम जब व्यवहार मूलम न यंजसा तत्व विमर्शनाय भवानम उसमिन भ्रमते मनो में। हे जोगेश्वर, हे भक्ति योग के टीचर गुरु योगेश्वर का यहां अर्थ, हे भागवत संबंधी योग सिखाने वाले, दृश्यमानम क्रिया फलम सब व्यवहार मूलम न यंजसा तत्व विमर्शनाय। आपने कहा कि ये जो संसारिक व्यवहारिक क्रियाएं हैं और क्रिया का फल सुख दुख आदि जो है, तत्व विचार के साथ इसका कोई महत्व नहीं है, ये सब व्यर्थ है, और आपने उदाहरण दिया सपना का, तो इस विषय में मेरा मन भ्रमित हो रहा है। आपने मुझको तो डांटा कि तुम अप्राकृत विषय का निरूपण करने के लिए प्राकृत उदाहरण क्यों दे रहे हो, चूल्हे की आग का, बटलोई का, दूध का, चावल का उदाहरण उन्होंने दिया, तो ये तर्क दे रहा है राजा कि हम जब उदाहरण दिए अप्राकृत वस्तु के लिए प्राकृत उदाहरण, तो आप तो हमको डांटे, लेकिन आप स्वयं ही जो जगत का व्यवहार है, मान लीजिए यहां स्त्री सुख है, चंदन लगाना है, माला पहनना है, ये जो सुख है इसको आपने कहा कि सपना के समान, तो हमारे समझ है तो आप भी गलत उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि सपना में जो चीज हम देखते हैं तो जगने पर वो वस्तु बाधित हो जाती है, रहती नहीं,
लेकिन यहां तो बात है कि हम जिसको भोग रहे हैं, जिन वस्तुओं को जिसमें मन बुद्धि किए हैं भोग रहे हैं, हम नहीं भी रहेंगे तो रहेंगी वस्तुएं, हम छोड़ देंगे डाइवर्स हो जाएगा तो दूसरे के साथ भी कोई हो सकता है, हो सकती है, तो बाधित नहीं है विषय। तो सपना से इसका उदाहरण क्यों दे रहे हैं आप? ये अच्छा तर्क है राजा का, ये हूबहू क्या स्वप्न है, यहां जो सुख दुख की प्रतीति हो रही है क्या सपना की तरह व्यर्थ है? इस विषय में हमारा मन भ्रमित हो रहा है। मैं ये जानता हूं कि आप बिल्कुल सही बोले हैं, लेकिन हमारा मन समझ नहीं रहा है। क्या है जिज्ञासा और श्रद्धा? श्रद्धा है कि ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन हमारे मन में पूरी बात धस नहीं रही। जैसे उन्होंने कहा कि घर गृहस्थी के सुख को कोई सपना के सुख जैसा स्वयं ही है नहीं समझ लेता है, तो उसको तत्वज्ञान ग्रहण कराने में वेदवाक्य भी समर्थ नहीं। तो उदाहरण तो उन्होंने दिया सपना का, जैसे मान लीजिए सपना में कोई किसी स्त्री के साथ है, या श्रक चंदन बनता आदि माला लगाया है, उसकी स्तुति हो रही है, तो वहां उस सुख का अनुभव करता है, लेकिन जब ही नींद खुलती है तब ही उस सुख की सामग्रियां और सुख दोनों खत्म हो जाते हैं।